שהיו בשבילי.
Je anilo premandana karuna
अष्टोत्तर शत श्री श्रीमाती श्री वनवेश ऐसी भक्ति विलास श्रील प्रभुपाद
इसको हम विभूति फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्रीराद गोविंद देव की श्रीपाद रामानंद आचार्य की प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कल हमने श्रीपाद मध्वाचार्य का वर्णन किया था, ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं, और आज और एक महत्वपूर्ण आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य का भी तिरोभाव तिथि है। तो भक्तों को आनंदित होना चाहिए आविर्भाव और तिरुभाव तिथि को मनाने में। एक प्रकार से तिरुभाव का अर्थ है कि जो महान वैष्णव है वो हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन वो अपने वाणी के द्वारा सदैव वाणी और उनके कार्यकलापों के द्वारा सदैव हमारे बीच में निवास करते हैं। दो प्रकार से हम वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, एक है वपु सेवा और दूसरी है वाणी सेवा। तो तिरभाव से हमें विरह भी होना चाहिए उनके प्रति, और दूसरा आनंदित भी होना चाहिए। क्यों विरह क्यों? क्योंकि आज से तिरभाव के बाद किसी वैष्णव का हमें जो वपु एसोसिएशन है, शारीरिक संग है, वो लाभ नहीं होता। और आनंदित इसलिए होना चाहिए क्योंकि उस दिन वो महान वैष्णव भगवत नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाता है, सदैव रूपेण भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। कल हमने चर्चा की थी कि चार प्रकार के संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे ब्रह्मा जी। फिर आगे चलकर कलयुग में जो प्रमुख आचार्य बने वो थे मध्वाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं विष्णु स्वामी। क्योंकि भगवान शंकरशन ने शिवजी को ये नॉलेज दिया, उनसे आगे ये रुद्र संप्रदाय की परंपरा शुरू हो जाती है, और आगे चलकर विष्णु स्वामी इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य बनते हैं। और फिर जो कुमार संप्रदाय है, चारों कुमारों को भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और उनसे आगे निम्बार्काचार्य कलियुगा में महान आचार्य कहलाते हैं। श्री श्री संप्रदाय में भगवान नारायण ने स्वयं लक्ष्मी देवी को नॉलेज दिया था। अर्जुन के बाद आगे कई सारे आचार्य हुए और उस संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य के रूप में विद्यमान रहे पहले और आज तक भी वो थे श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो आचार्य का मतलब ये नहीं है कि वो अपने जो अनुयायी हैं उनको एक्सप्लॉइट करें। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं आचार्य का मीनिंग, द आचार्य इज नॉट एन एक्सप्लॉइटर ऑफ हिज फॉलोअर्स, द हार्ट ऑफ द आचार्य एज ही इज कॉन्फिडेंशियल सर्वाइटर ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज कंपैशनेट फॉर द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी आर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। He always tried to find out the ways and means of changing face of such activities, making them favorable for attaining the devotional stage. That is the qualification of an acharya. तो आचार्य की योग्यता का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आचार्य या गुरु का मतलब यह नहीं है कि अपने जो शिष्य है अनुयायी है उनके द्वारा भोग या सुविधा आदि प्राप्त करने में ही वो जीवन बिताए, बल्कि आचार्य का मतलब है भगवान का अंतरंग सेवक, और ऐसा सेवक कि जिसका हृदय दया की भावना से भरा होता है सदैव। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि इस जगत के जो जीव है भगवत भक्ति या सेवा से रहित हैं, और उनको भगवत सेवा में नियुक्त करने के लिए वो क्या करता है, ऐसे कार्यकलाप ढूंढता है शास्त्रों के आधार पर कि जिसके द्वारा ये जो जीव है भौतिक इल्यूजन भ्रम से मुक्त होकर भगवत सेवा में नियुक्त हो जाए। तो ऐसे ही श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं। तो रामानुजाचार्य का जो जीवन है, एक महान आचार्य हुए हैं अनंत आचार्य श्री संप्रदाय में, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है उसका नाम था प्रपन्नामृत, जिस पर रामानुजाचार्य का वर्णन उन्होंने उस ग्रंथ में किया है। चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद ने इस चीज का वर्णन किया है। जैसे गौड़िया वैष्णवों का जो सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के आधार पर छह गोस्वामियों ने प्रस्तुत किया, उसी प्रकार से श्री संप्रदाय का जो सिद्धांत है श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य यमुनाचार्य के आदेशानुसार श्रीपद रामानुजाचार्य ने किया। तो ऐसे रामानुजाचार्य के बारे में वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो शंकराचार्य के जो सिद्धांत है मायावाद सिद्धांत, कहते मायावाद सिद्धांत वेदांती कहा जाता है, तो उन्होंने जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने मायावाद सिद्धांत के जो दांत हैं टीथ ऑफ द मायावादी फिलोसोफर, प्रभुपाद कहते हैं मायावादी फिलोसोफर के जो दांत हैं वो किसने तोड़े हैं इस समय में, रामानुजाचार्य ने। उनसे स्ट्रांग कोई लगभग आचार्य नहीं हुआ है। तो ऐसे रामानुजाचार्य के बारे में सुनना हमारे भक्ति के लिए बहुत अधिक हितकर है। और जब रामानुजाचार्य का जीवन को हम सुनते हैं तो देखते हैं कि कितना प्रगाढ़ अनुराग उनका अपने गुरु और वैष्णवों की सेवा के लिए था, और उतना ही प्रेम कृष्ण के लिए था। इसलिए प्रभुपाद गीता और भागवत के तात्पर्य में श्लोकों का वर्णन करते हुए कहते हैं, यश्च देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु दर्शते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, कि जिस व्यक्ति की एक निष्ठा भगवान में है उतनी ही एक निष्ठा आध्यात्मिक गुरु में है, तो उस व्यक्ति को सारे शास्त्रों का जो सार है प्रकाशित हो जाता है उसके हृदय में। तो इसी प्रकार से ये जो रामानुजाचार्य हैं ये विशेष आचार्य हैं। ऐसे रामानुजाचार्य पूरे भारत में कृष्ण भावना का प्रचार किया है, और उनकी जो मेन शिक्षा थी उसको एक ही शब्द में कहा जाता है, उसको कहते प्रपत्ति। प्रपत्ति का मतलब है सरेंडर, बस ये एक शब्द में रामानुजाचार्य के सिद्धांत को बोला गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये जगत में प्रकट हुए, पद्म पुराण में वर्णन आता है इन चार संप्रदायों का। पहले से ही पद्म पुराण में चार संप्रदायों का वर्णन है और चार संप्रदायों के जो प्रमुख आचार्य आने वाले हैं, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी और रामानुजाचार्य, इनके इनका भी वर्णन पहले से ही है, व्यासदेव ने पहले से लिखा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आते हैं और जो स्वयं भगवान है और विशेष शिक्षा या विशेष जो रस है भगवत भक्ति का, वो चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने वाले थे, उसको क्या कहा जाता है, अनर्पित चरम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, कि ऐसी चीज जो आज तक किसी आचार्य ने या किसी अवतार ने नहीं दी थी जीवों को, वही चीज चैतन्य महाप्रभु देने जा रहे थे। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रीयाम, अपनी भक्ति देने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और उन्नत उज्ज्वल रस भगवान के प्रति जो माधुर्य भावना की जो सेवा है, सेवा का भाव है, वो चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु चारों संप्रदाय से दो दो चीजों को ले लेते हैं और उससे अपना सिद्धांत स्थापित करते हैं और अपने अनुयायियों को उस सिद्धांत पर चलने की शिक्षा देते हैं। तो जैसे हमने कल सुना था कि चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य के संप्रदाय का आश्रय ग्रहण किया, उस संप्रदाय को स्वीकारा, ब्रह्म संप्रदाय को, और मध्वाचार्य के संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें ली। पहली चीज क्या थी, केवल अद्वैत निरासन। केवल अद्वैत निरासन का मतलब है अद्वैतवादी जो मायावाद है उसका पूर्ण रूपेण खंडन करना, ये पहली चीज उन्होंने ली। और दूसरा लिया कृष्ण मूर्ति सेवन, क्योंकि मध्वाचार्य के संप्रदाय में कृष्ण के विग्रह की पूजा बहुत प्रगाढ़ रूप से होती है और उस संप्रदाय में इस बात को स्थापित किया गया है कि भगवान उनके विग्रह से अभिन्न है, कृष्ण साक्षात उनके विग्रह के रूप में सेवा स्वीकार करने के लिए उपस्थित हैं। और जो दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, उसके आचार्य विष्णु स्वामी हैं, उसमें से चैतन्य महाप्रभु ने दो शिक्षा ली। पहला प्रिंसिपल क्या लिया, तदीय सर्वस्व भाव। तदीय सर्वस्व भाव का अर्थ है टोटल डिपेंडेंस, पूर्ण रूपेण कृष्ण के प्रति आश्रित हो जाना, उनके ऊपर निर्भर हो जाना, ये अनन्य भक्ति का एक लक्षण है। भक्ति में उन्नति करता है भक्त तो यही भावना का उदय होता है कि वो धीरे धीरे पूर्ण रूपेण कृष्ण पर निर्भर हो जाता है। जिस प्रकार से गाय है, गाय को जब व्यक्ति सेल करता है तो जिसको सेल किया गया है उसी पर निर्भर हो जाती है गाय, तो उसी प्रकार से कोई आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेता है उसका मतलब है कि उसने अपने आप को गुरु को क्या किया है, सेल कर दिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को डांटा था, जब सनातन गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए, जाते समय उन्होंने पानी नहीं था उनको पीने के लिए, रास्ते में जो भी गड्ढे में पानी आता था वो पीते पीते जगन्नाथपुरी पहुंचे सनातन गोस्वामी। तो देखा जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उससे पहले उनके शरीर में बहुत फोड़े आ गए, बहुत पस बहने लगा, गंदगी होने लगी, बहुत बीमार हो गए। जब चैतन्य और उन्होंने सोचा कि जगन्नाथपुरी में जाकर बस ये शरीर का क्या लाभ, मैं जाकर इस शरीर को जगन्नाथ के रथ के नीचे डालूंगा और इसको त्याग कर दूंगा। चैतन्य महाप्रभु जब उनको सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर के निवास स्थान में मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे सनातन, यदि एक शरीर छोड़कर शरीर को अर्पित करके या आत्महत्या करके कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण प्राप्ति इतनी सरल है, तो मैं ऐसे हजारों हजारों शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं। महाप्रभु ने डांटा, उन्होंने कहा क्या अधिकार है दूसरे की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना, उसको खर्च करना, अधिकार नहीं है आपके पास ऐसा, क्योंकि ये जो शरीर है तुमने मुझे सौंप दिया है, सेल किया है, कब? जब चैतन्य महाप्रभु राम केले में गए थे, या फिर बनारस में उन्होंने उनके प्रति शरणागत हुए थे, कि उसी समय तुमने ये शरीर मुझे दिया है और इस शरीर पर मेरा अधिकार है, तो अभी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस पर। तो इसको कहते पूर्ण रूपेण निर्भर, मतलब गुरु को ये शरीर हम क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, और फिर उनका अधिकार बनता है कि वो शिष्य के शरीर को जैसा मर्जी वो यूज करें, जहां मर्जी लगाए सेवा में। क्योंकि अभी वो किसका, जैसे बैल किसान का हो जाता है, जहां आवश्यकता है वहां बैल को जोतते हैं, जोतने में लगाते हैं। तो उसी प्रकार से शिष्य होने का मतलब ही है कि पूर्ण रूपेण गुरु को बेच देना, सरेंडर हो जाना। इसलिए दास या सेवक से बढ़कर जो शब्द है वो गुलाम है। गुलाम का मतलब ही है, दास तो पर्टिकुलर सेवा करेगा बस इतना ही, ड्राइवर है तो ड्राइविंग की करेगा, और थोड़े चौकीदार होके या कपड़े धोएगा बाथरूम में, नहीं। लेकिन गुलाम का मतलब है सारी सेवाओं में नियुक्त हो जाता है। इसलिए शिष्य का मतलब ही है वो गुलाम बने अध्यात्म गुरु का। तो चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु स्वामी के संप्रदाय से तदीय सर्वस्व भाव पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति निर्भरता या आश्रय ग्रहण करना, इसको स्वीकारा। और दूसरा था राग मार्ग। राग मार्ग जो चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु स्वामी से स्वीकारा, राग मार्ग का मतलब ही है स्पॉन्टेनियस सर्विस की भावना भगवान के प्रति। और जो निम्बार्काचार्य हैं, कुमार संप्रदाय के आचार्य, उनसे चैतन्य महाप्रभु ने दो शिक्षा ली, उसमें से एक शिक्षा थी एकांत राधिकाश्रय। श्रीमती राधा रानी का एकांत आश्रय लेना, क्योंकि हमारे संप्रदाय में हम कृष्ण को वृंदावन ईश्वर नहीं कहते, वृंदावनेश्वर। हम किसको वृंदावन की स्वामिनी कहते हैं? राधा रानी को वृंदावनेश्वरी, बल्कि वृंदावन ईश्वर ईश्वरी है ना। मदन मोहन तो कृष्ण को कहते हैं, लेकिन हम श्रीमती राधा रानी को और अधिक गुणगान करते हैं, मदन मोहन मोहिनी है। तो भगवत प्राप्ति हेतु जो आश्रय आवश्यक है वो श्रीमती राधिका का है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुमार संप्रदाय से, निम्बार्काचार्य से पहले लिया एकांत राधिकाश्रय, और दूसरा लिया गोपी भाव, कि चैतन्य महाप्रभु ने निम्बार्काचार्य के संप्रदाय से लिया है। और रामानुजाचार्य, जो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, श्री मीन्स लक्ष्मी, तो इस संप्रदाय के जो आचार्य हैं, या इस संप्रदाय से रामानुजाचार्य के महाप्रभु ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा ली, और वो दो शिक्षा एक साधक के लिए जो भगवत भक्ति में अभी बालक ही है, या भगवत भक्ति में वास्तव में मैच्योर होना चाहता है, भगवान की अनुकंपा को प्राप्त करना चाहता है, तो उन्होंने क्या लिया? अनन्य भक्ति, पहला अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, जिसका रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने यही शिक्षा आगे दी, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान करमादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, या फिर सर्वपादे विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। तो ये अनन्य भावना की जो भजन है, अनन्य भक्ति है, जिसको भगवान ने भगवद गीता में कहा है अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्ययुक्तानां। ये अनन्य भाव से कोई मेरा भजन करता है नित्य रूप से, तो भगवान उनसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को अनन्य भाव से व्यक्ति खरीद लेता है। और दूसरी चीज रामानुजाचार्य के संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने ली, वो थी भक्त जन सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा। तो वास्तव में देखा जाए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में ये दो चीजों को बहुत अधिक मात्रा में हम देखते हैं हमारे संप्रदाय में। एक तो देखते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविता मा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर आहेतुकी त्वयि, ये अनन्य भाव चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य से स्वीकारा है। और उसी चीज को चैतन्य महाप्रभु ने आगे अपने जो अनुयायी है उनको दिया है। तो ऐसे जो अनुयायी है ब्रजवासी गण है या फिर वृंदावन के जो छह गोस्वामी हैं, हाँ छह गोस्वामी इतने महान महान पंडित थे, मंडलपति थे, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत, इतने बड़े ऐश्वर्यमय जीवन यापन करते थे छह गोस्वामी, लेकिन उन्होंने इस ऐश्वर्य संपदा आदर सम्मान आदि को एक तुच्छवत उन्होंने त्याग दिया, लेकिन भगवत भक्ति को अनन्य भाव से स्वीकारा है। और दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकारी वो थी क्या थी, भक्त जन सेवा, भक्तों की सेवा। उसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाहम विप्रो नच नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्र नाहम वर्णी नच गृहपतिर न वनस्थयतिर वहा किंतु प्रोध्यो अखिल पूर्णामृताब्धिर गोपीर भर्तुर पद कमलयो दास दासानु दास। भक्तों की सेवा का मतलब क्या है, ये भावना ये मूड हम अपने हमारे हृदय में धारण करें, दास दासानु दास, ये भावना यदि होती है तभी व्यक्ति वास्तव में कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। कृष्ण हमारी योग्यता से, हमारे पांडित्य से, हमारी शिक्षा से, विद्वत्ता से, हमारे सौंदर्य बल धन मान इन सबसे आकृष्ट नहीं होते। कृष्ण तो आकृष्ट होते हैं ब्रजवासियों को बाहरी रूप से देखा जाए ब्रजवासियों के पास क्या है, ब्रजवासी तो सर्वसामान्य ग्वाले हैं, वहां गौओं का संभाल करते हैं, गोबर के कंडे बनाते हैं, खेती करते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, उनके पास क्या है भगवान को आकृष्ट करने के लिए, लेकिन उनके पास ये दो चीजें हैं, सर्विस का एटीट्यूड और दूसरा क्या है अनन्य भाव का भजन। गोपियां या वृंदावन के निवासी इससे परे कुछ और मांगते नहीं थे। तो इसीलिए ये जो रामानुजाचार्य है चैतन्य महाप्रभु इनके शिक्षाओं को बहुत गंभीरता से स्वीकार किया। और मैं कल सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में कितने सारे चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में लीलाएं आती हैं, विशेष रूप से ये दो शिक्षाओं से संबंधित है। तो ये जो रामानुजाचार्य है ऐसे नहीं कि रामानुजाचार्य से पहले कोई आचार्य नहीं हुए, और ऐसे भी नहीं कि संप्रदाय में मध्वाचार्य से पहले कोई आचार्य नहीं हुए, नहीं, क्योंकि इन आचार्यों ने क्या किया है, इनको फाउंडर आचार्य कह सकते हैं आप शास्त्रों में, ये जो फाउंडर आचार्य संस्थापक आचार्य नाम कहा मिलता नहीं है, ये प्रभुपाद ने लाया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पूरे जीवन को देखा गया, जीवन चरित्र को, कहां इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन एक जगह थोड़ा सा वर्णन आया है। तो संप्रदाय को फिर से सुव्यवस्थित रूप से करके जो आचार्य है पुनः उसको एक सही फॉर्म देता है और आगे उस संप्रदाय की शिक्षा को बहुत विस्तृत रूप से प्रेजेंट करता है, वो वास्तव में फाउंडर आचार्य है। तो ये संप्रदाय में देखा जाए चैतन्य महाप्रभु के बाद तो इतना प्रोमिनेंट कुछ कार्यकलाप नहीं हुआ था इस संप्रदाय का, श्रील प्रभुपाद ने आकर उन शिक्षाओं को सही में स्थापित किया। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, ये इनकी शिक्षाओं को भी इन चार आचार्यों ने स्थापित किया था। तो इनसे पहले रामानुजाचार्य से पहले कई आचार्य थे। रामानुजाचार्य ने मेन आचार्य क्यों कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने श्री संप्रदाय का जो प्रमुख सिद्धांत है उसकी स्थापना की थी और पूरे भारत भर उन्होंने प्रचार किया था। उनसे पहले आचार्यों ने इतना अधिक नहीं, जैसे आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो गुरुज हैं, साधुज हैं, बाबाज हैं, वो अपने आगे जगत गुरु टाइटल लिखते हैं, 1008 जगत गुरु मंडलपति, जगत गुरु प्रभुपाद एक जगह कहते हैं, ऐसे जगत गुरु जो अपने गांव से भी बाहर नहीं गए कभी वो काहे के जगत गुरु लेकिन नाम उन्होंने लग दिया जगत गुरु, और वास्तव में जगत गुरु कोई है, महाप्रभु की शिक्षाओं को किसी ने फैलाया है तो वो श्री श्रील प्रभुपाद है। तो रामानुजाचार्य ने पूरे भारत वर्ष में प्रचार किया और विशेष रूप से जैनीज बौद्धिस और मायावादीज हैं, हाँ उनको हरा दिया, उनको कन्वर्ट किया, कृष्ण भक्ति दिया। तो ऐसे जो रामानुजाचार्य हैं उनसे भी पहले एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम था यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य से पहले भी एक आचार्य हुए जिनका नाम था नाथ मुनि। और वास्तव में इस संप्रदाय की जो परंपरा है वो नाथ मुनि से शुरू हो जाती है। नाथ मुनि बहुत वंडरफुल आचार्य थे, और नाथ मुनि के बाद जो, क्योंकि इस संप्रदाय जो श्री संप्रदाय है उससे पहले थोड़ा सा अस्त व्यस्त था श्री संप्रदाय। उससे पहले द्वापर युग के अंत में, क्योंकि जैसे राजा परीक्षित को शाप मिला ना, तो उस समय फिर राजा परीक्षित को शाप मिलने के बाद, क्योंकि जब सर खराब हो जाता है तो सब कुछ खराब होता है। अभी वो श्रृंगी ब्राह्मण का दिमाग खराब हो गया, कलयुग में सारी चीजें खराब होने लगी। तो जब ये जो नाथ मुनि थे और राजा परीक्षित को जब शाप मिला, तो उनके बाद फिर उनके आसपास 12 आचार्यों का जन्म हुआ दक्षिण भारत में। वो जो 12 आचार्य थे कलि की शुरुआत में, कलयुग शुरू हुआ तो 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल शुरुआत के। उस समय भगवान के जितने भी आयुध थे, आयुध का मतलब है उनके जो शस्त्र अस्त्र थे, उन शस्त्र अस्त्रों ने अवतार धारण कर लिया। जैसे चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि मंजरी, सारी जो मंजरिया है वो 6 गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। तो उसी प्रकार से श्री संप्रदाय में जो भगवान के जो सारे यह है आयुध है, उन आयुधों ने ये अवतार धारण भक्तों के रूप में प्रकट हुए है, उनको अलवर कहा गया। अलवर या तमिल में अलवर कहते हैं, अलवर या अलवर। अलवर का मतलब है, अल का मतलब है वेरी डीप, जो बहुत डूबा हुआ है। वर का मतलब है लव ऑफ गॉड, कि जो भगवत प्रेम में इतना अधिक डूबा हुआ है उसको अलवर कहा गया है। और ये ऐसे भगवान के अंतरंग पार्षद थे। जब ये आए थे तो ये कभी आपस में मिले नहीं, 12 जो डिवोटीज है, 12 में से 11 पुरुष थे और एक स्त्री थी जिनका नाम था अंडाल गोदा देवी, बहुत वंडरफुल वैष्णवी थी। तो ऐसे जो 12 वैष्णवास थे उनके बाद उन्होंने क्या किया, इस संप्रदाय में भगवान का बहुत अधिक गुणगान किया। और चैतन्य महाप्रभु इनसे प्रीति रखते थे, अलवरों से। उनमें से एक अलवर कौन है, प्रभुपाद भी एक अलवर से प्रेम करते थे, राजा कुलशेखर। उनकी प्रार्थना प्रभुपाद दोहरा करते थे, हाँ कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यो मे विशतु मानस राजांस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। कि हे कृष्ण, अभी मेरा जो शरीर है वो सुव्यवस्थित है और अभी मेरा मन आप में लगा हुआ है, आपका मैं स्मरण कर सकता हूं, इसी क्षण मुझे मृत्यु आने दो। एक कमल नाथ के समान आपके जो चरण है, मेरा मन का जो हंस, मन रूपी हंस उस कमल नाल में जुड़ा हुआ है, उसमें आनंद ले रहा है, इसी क्षण मेरे मृत्यु आने दो, अन्यथा जब भी मैं वृद्धावस्था आएगी तब कफ वात पित्ते स्मरणम कुतस्तः, मेरा शरीर कफ वात पित्त से भरा हो जाएगा तो आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद इस श्लोक को कई बार दोहराते थे, इसलिए जो 12 अलवरों में से एक अलवर जो कुलशेखर है, उनका एक जो बुक है मुकुंद माला स्तोत्र, प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन उसका किया है, आधा ट्रांसलेशन किया है, बाद में सत्स्वरूप दास गोस्वामी ने किया है। तो ऐसे जो 12 डिवोटीज थे अलवर, हाँ ये इनके, इसलिए अलवर के कारण जगन्नाथपुरी आप जाते हो तो वहां एक विग्रह है अलारनाथ, आपको याद होगा तो अलारनाथ, उनको अलवरनाथ कहा जाता है। तो ऐसे 12 जो अलवर थे इन्होंने क्या किया, भगवान की, क्योंकि इनके हृदय में भगवान के लिए बहुत अधिक प्रेम था और वही प्रेम उनके हृदय से गीतों के रूप में बाहर निकला, इतना अधिक, क्योंकि भगवान तो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। धर्मश्च तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है भगवान के भक्तों के हृदय में रहता है, शास्त्रों में नहीं रहता। शास्त्रों से आप धर्म को समझ नहीं सकते। धर्म को समझने के लिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उसको उसका आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए भागवत कहता है महाजनो एन गता सह पंथा। तो ऐसे जो ये आचार्य थे, 12 आचार्य थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान की स्तुति के लिए, भगवान की स्तुति हेतु बहुत सारे गीतों में भगवान का वर्णन किया। और जो गीत उन्होंने वर्णन किए थे उनको कहा जाता है नालायर दिव्य प्रबंधम, उस टेक्निकल लेकिन बहुत स्वीट है, नालायर दिव्य प्रबंधम। तो एक उनमें से एक अलवर थे जिनका नाम था नम्मा अलवर, और ये नालायर दिव्य प्रबंधम जैसे आप कहते कि छह गोस्वामियों के ग्रंथ है, हमारे लिए क्या है, छह गोस्वामियों के ग्रंथ, वैसे ही श्री संप्रदाय में नालायर दिव्य प्रबंधम है जिनको द्रविड़ देश साउथ इंडिया में तमिल वेद कहा जाता है, तमिल वेद। और जो 4000 है, नालायर का मतलब है 4000 पंक्तियां, नालायर का मतलब प्रबंध जो उन्होंने लिखे हैं, सॉन्ग्स या स्तुति या मूल्यवान जो कविताएं हैं, ये बहुत अधिक दिव्य हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। और इन्होंने ये जो सॉन्ग्स है वो स्पेसिफिक डीटीज के लिए गाया, स्पेसिफिक विग्रह के लिए गाया है उन्होंने। और इसलिए जिन जिन विग्रहों के लिए उन्होंने ये गीत गाए या जिन जिन स्थानों में भगवान की स्तुति की, ऐसे नहीं कि पहले से वो नोटबुक में प्रिपेयर होकर गए थे क्या स्तुति करना है, नहीं, भगवान को देखने मात्र से उनके शुद्ध भक्त के हृदय में भगवत प्रेम स्फुरित हो जाता है और वही प्रेम सॉन्ग्स या प्रेयर्स का रूप धारण करता है। जैसे कुंती महारानी है, श्रील प्रभुपाद है, भक्ति विनोद ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर है, वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज, इनके जो गीत हैं, इनको गाने मात्र से हम अपने हृदय को देखते कि मेल्ट हो रहा है, कुछ तो होता है। ये सॉन्ग गाने से क्या है, कुछ तो महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम भगवान के लिए है वही प्रेम बाहर आए तो किस फॉर्म में आता है, इन स्तुतियों के, इन गीतों के रूप में बाहर आके प्रकट हो जाता है। और जिन स्थानों में जिन विशेष विग्रह को देख के उन्होंने उनके हृदय से निकले तो उन स्थानों को कहा जाता है दिव्य देशम। क्या कहा जाता है, दिव्य देशम। दिव्य का मतलब है जो तीन तीन गुणों से परे है, भगवान है। तो दिव्य देशम का मतलब है देश में स्थान, तो दिव्य देश टेम्पल को भी आप क्या कह सकते हो, दिव्य देश। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरे जो मंदिर है वो वैकुंठ है, वैकुंठ है मेरे मंदिर। तो ऐसे जो श्री संप्रदाय में ये 108 दिव्य देशम है, 108 दिव्य देशम है। और शास्त्र वर्णन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में उनमें से इन सारे 108 तो 106 पृथ्वी में है और 2 कहाँ है, वैकुंठ लोक में है। तो कोई व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में 106 दिव्य देशों को दर्शन करता है जहां भगवान के अलग अलग विग्रह हैं, उनमें से द्वारका में है, द्वारकाधीश है, वृंदावन में गोवर्धन में है और गोकुल में है, फिर नेपाल में है, जगन्नाथ जी भी एक दिव्य देशम है। तो ऐसे पूरे भारत में ये दिव्य देशम है। कोई व्यक्ति इनका दर्शन करता है 106 का तो वो इतना क्वालिफाइड हो जाता है कि उसको आखिरी 2 का दर्शन करने का मौका मिल जाता है, कहा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ लोक में। तो ऐसे ये जो दिव्य देशम है, क्योंकि इनको विजिट, जो टेंपल में हम जाते हैं किसी, तो उस मंदिर को विजिट करते हैं तो उस डेटीज के मूड के अनुसार हमें उनका दर्शन करना चाहिए। और उस विग्रह का क्या मूड है, क्या भाव है, उसको इन आचार्यों ने प्रेजेंट किया है। क्योंकि जब हम इन आचार्यों का ग्लोरी सुनते हैं, आचार्यों के गीतों को सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या गाया है, उसका मीनिंग आदि क्या है, तो वही भावना हमारे हृदय में जागृत हो जाती है, तब वास्तव में आप विग्रह का दर्शन कर सकते हो, अन्यथा नहीं। विग्रह का दर्शन तो हमें आचार्य के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि आचार्य उस विग्रह के मूड आदि को जानता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार तिरुपति जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में एक जगह रुके और वहां एक टेम्पल था, तो वहां का जो ड्राइवर है वो कहते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल नहीं है। प्रभुपाद ने कहा ये बहुत पावरफुल विग्रह है। ड्राइवर ने कहा लेकिन यहाँ कोई जाता नहीं है। प्रभुपाद ने कहा वो बहुत पावरफुल विग्रह है, हम जाएंगे। तो अभी हम देख सकते हैं वो ड्राइवर का मूड और एक आचार्य का मूड किस भावना से उस विग्रह को देखता है और जानता है वो जो आचार्य है। हम तो हमेशा देखते हैं हमारे भौतिक मूड के अनुसार, लेकिन हम भगवत मूड को नहीं समझ सकते ना भगवान के मूड को। तो इसलिए स्पेशल दर्शन हमें चाहिए, तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? आचार्य। भक्ति सिद्धांत महाराज जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे सदा सदैव, जो गरुड़ स्तंभ है गरुड़ जी के नीचे खड़े होके करते थे, क्या इनके थ्रू में देख सकता हूं। या फिर दूसरा मूड क्या था उनका कि जगन्नाथ जी कभी मुझे नहीं देखेंगे, मैं तो नीच पतित घृणित व्यक्ति हो, भक्ति का तो मेरे अंदर लवलेश है नहीं, लेकिन जगन्नाथ अपने भक्तों को देखने में आनंद अनुभव करते हैं और जगन्नाथ जी अपने जो भक्त गरुड़ जो रोज सामने उनकी स्तुति करने के मूड में खड़े हैं उनको जरूर देखते हैं सदैव, इसलिए उन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो मेरे ऊपर भी थोड़ा सा दृष्टि पड़ जाएगा। और महाप्रभु भी उसी प्रकार से उसी मूड के अनुसार जगन्नाथ को देखते थे, वो भी हमेशा गरुड़ जी का आश्रय लेकर उनके चरणों में खड़े होकर देखते थे। तो वास्तव में जो आचार्य हैं वो हमें इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट का मतलब क्या है? दिव्य दृष्टि, जैसे इंजेक्शन देता है डॉक्टर, तो वैसे ही आचार्य उनके संग से, उनके वाणी से, उनकी शिक्षा से वो जो मूड है वो हमें इंजेक्ट करता है। जैसे भगवान ने भी दिया ना दिव्य दृष्टि, किसको किसको दिया? आजकल पिछले कई क्लास में हमने दिव्य दृष्टि के बारे में सुना था, हाँ, तो भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दिया था, संजय को भी मिला था दिव्य दृष्टि। इस प्रकार से इस संप्रदाय में जो नाथ मुनि थे उन्होंने उन 12 अलवरों की शिक्षाओं को स्थापित किया, और फिर उनके बाद नाथ मुनि के बाद एक आचार्य प्रकट हुए यमुनाचार्य, उनका नाम भी बहुत अच्छे रूप से पड़ा यमुनाचार्य, क्योंकि उनका जन्म वृंदावन में यमुना के किनारे हुआ था। उनके माता वृंदावन यात्रा में आए थे, जैसे हम यात्रा लेके जाते हैं, तो उनकी माँ दक्षिण भारत से जब वृंदावन दर्शन के लिए आई थी वृंदावन यात्रा के लिए, तो इस बालक का जन्म हुआ। तो नाथ मुनि जो उनके ग्रैंडफादर थे ये भी उसी संप्रदाय के आचार्य थे, तो उन्होंने अपने पौत्र ना पौत्र का नाम यमुना वृंदावन में है तो इनका नाम क्या लिखा? यमुनाचार्य इनका नाम रखा। तो ऐसे यमुनाचार्य इस संप्रदाय के आगे चलकर आचार्य हुए हैं, और उनके बाद यमुनाचार्य ने देखा कि इस संप्रदाय को आगे चलाने वाला कोई, उनके कई शिष्य थे और वो सारे शिष्य बहुत धुरंधर थे, बहुत पावरफुल थे, विद्वान थे, और उस समय रामानुजाचार्य एक छोटा सा युवक था। फिर भी यमुनाचार्य ने देखा कि इस संप्रदाय को आगे कोई हैंडल कर सकता है, लेके जा सकता है, शिक्षा को स्थापित कर सकता है, तो वो ये रामानुज हो सकता है, रामानुजाचार्य, उनके अलावा नहीं। इसलिए श्री संप्रदाय के सारे आचार्यों में कोई आचार्य फेमस है तो वो कौन है? श्रीपद रामानुजाचार्य। इसलिए इस संप्रदाय में रामानुजाचार्य को उद्धारक आचार्य कहा गया है। कौन सा आचार्य? उद्धारक आचार्य, जो वास्तव में सारे जीवों का उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। अरे रामानुजाचार्य वास्तव में कौन है? शास्त्र में वर्णन आता है कि कृष्ण और बलराम, उसी प्रकार से राम और लक्ष्मण। तो भगवान बलराम अपना जो विस्तार है, या कृष्ण अपना विस्तार किस रूप में करते हैं? बलराम के रूप में करते हैं, या इनके नाम से भी हमें पता चलता है राम अनुज, अनुज का मतलब छोटा, या फिर जो राम को सदैव फॉलो करता है सेवा की भावना से उसको रामानुज कहा जाता है, और रामानुज का मतलब ही है वो लक्ष्मण से अभिन्न है, साक्षात लक्ष्मण है। तो ऐसे रामानुजाचार्य के बारे में शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान बलराम अपना जो विस्तार है वो अनंत शेष के रूप में करते हैं, और जो अनंत शेष भगवान की सेवा के लिए दो प्रमुख कार्य करते हैं। क्या दो प्रमुख कार्य हैं? दो प्रकार से अनंत शेष सदैव भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करते हैं। एक कार्य है बेड, भगवान को सोना होता है तो थोड़े डनलॉप और स्लिपवेल के गद्दे मंगवाते नहीं, कौन सा बेड है उनका? अनंत शेष, शेष शेष शाही विष्णु, शेष और शाही का मतलब है सोना, शेष शाही विष्णु भगवान का एक नाम है। जो शेष पर सोते हैं वो अनंत शेष है, अनंत शाही है, कृष्ण है। तो ऐसे जो अनंत शेष है, अनंत मुख है उनको, और अनंत मुखों से सदैव अनंत सालों से अनंत का गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे अनंत शेष भगवान की सेवा दो प्रकार से करते हैं, एक तो उनका बेड बन जाते हैं और दूसरा उनका अम्ब्रेला। भगवान अम्ब्रेला के रूप में है कि नहीं? जब कृष्ण मथुरा से गोकुल लिए जा रहे थे वसुदेव के द्वारा, तो बहुत तीव्र बारिश हो रही थी, तो बारिश के समय जब ये कारागृह से बाहर निकले वसुदेव भगवान को लेकर बाल कृष्ण को टोकरी में, तो भगवान अनंत शेष सदैव तत्पर है, वो बिना सेवा किए रह नहीं सकते अनंत शेष, उनका काम ही है सेवा। तो तुरंत भगवान अनंत शेष प्रकट हो जाते हैं अम्ब्रेला, ऐसा अम्ब्रेला है, हमें तो हर अम्ब्रेला पकड़ना पड़ता है, लेकिन यह अम्ब्रेला वो भी इतना कभी भी विस्तार हो सकता है, और वो अम्ब्रेला साथ साथ चलता है, बातें भी करता है, गुणगान भी करता है। तो ऐसे अनंत शेष एक तो बेड के रूप में सेवा करते हैं और दूसरा अम्ब्रेला के रूप में सेवा करते हैं। और एक विशेष सेवा भगवान की होती है, हाँ, या आवश्यक होती है, एक है उठने से पहले भगवान को और सोने से पहले। उठने से पहले भगवान को उठाया जाता है भगवान का गुणगान करके, ग्लोरिफिकेशन, और जब भगवान रात को सोते हैं तो उनका क्या किया जाता है? ग्लोरिफिकेशन, गुणगान गाया जाता है, तब भगवान सोते हैं। तो ऐसे अनंत शेष की दो शक्तियां हैं, हाँ, एक है धारण शक्ति और दूसरा है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। धारण शक्ति क्या है कि भगवान अनंत शेष के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को अपने हुड के ऊपर क्या किया है, उन्होंने धारण किया है, ये धारण शक्ति है अनंत शेष की। लेकिन वही अनंत शेष के पास दूसरा शक्ति है जिसको कहा गया है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति, कृष्ण कथा का वर्णन करना, ये सर्व सामान्य जीवों में पाया नहीं जाता, कुछ ही जीव भगवत गुणगान या वर्णन कर सकते हैं, और इसमें से जो प्रमुख कोई है कृष्ण कथा वर्णन करने की शक्ति या कृष्ण कथा वर्णन शक्ति के अनंत शेष के जो अवतार है वो कौन है? रामानुजाचार्य है। इसलिए रामानुजाचार्य को शक्ताविश अवतार कहा गया है। शक्ताविश अवतार किस चीज के शक्ताविश अवतार? जैसे व्यासदेव शक्ताविश अवतार है, क्या शक्ति है व्यासदेव में? उन्होंने सारे ग्रंथ शास्त्रों को लिखित रूप दे दिया। श्रील प्रभुपाद को भी शक्ताविश अवतार कहा जाता है, व्यासदेव के एक्सपेंशन है एक प्रकार से, इन्होंने भी इतने ग्रंथ लिख दिए हैं कम समय में, हाँ, बहुत अधिक मात्रा में। तो उसी प्रकार से ये जो रामानुजाचार्य हैं, ये भी शक्ताविश अवतार है, कृष्ण कथा वर्णन शक्ति के अनंत शेष के अवतार है। तो ये रामानुजाचार्य प्रकट होने से पहले ही इस संप्रदाय के जो दो आचार्य थे, एक थे नाथ मुनि और दूसरे थे यमुनाचार्य। तो ये जो नाथ मुनि थे, ये दोनों पहले से ही रामानुजाचार्य के विग्रह की पूजा करते थे, और नाथ मुनि ने कहा था कि हे यमुनाचार्य, अभी टाइम आ गया है, यमुनाचार्य को बोला नाथ मुनि ने, कि आगे चलकर एक ऐसा शिष्य होगा आपका जो हमारा भी उद्धार करेगा। इसी संप्रदाय में ये मूड है,
जो भी गुरु है या महान वैष्णव है उनका मूड क्या है, दास दासानुदास। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास जब उनके शिष्य आते थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको प्रणाम करते थे और प्रणाम करते हुए क्या कहते थे, दासोस्मि। तो ये मूड भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहां से स्वीकारा है, श्री संप्रदाय के जो गुरु वर्ग है, गुरु वृंद है। हाँ, क्योंकि ये जो मूड है हाईएस्ट मूड है, इस हाईएस्ट मूड को श्री संप्रदाय के जो आचार्य है इस पूरे संप्रदाय में स्वीकारते हैं। और ऐसे ही रामानुजाचार्य के जीवन से भी हम देखते हैं हजारों जो उदाहरण है। हाँ, तो रामानुजाचार्य उस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं और बहुत अधिक प्रसिद्ध आचार्य हैं उस संप्रदाय में। इनका जो जन्म है चेन्नई के पास एक स्थान है श्री पेरुम्बुदूर, भगवत रामानुजर अवतारित श्री पेरुम्बुदूर। श्री पेरुम्बुदूर जो स्थान है वहां रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। और आज भी आप उस स्थान में जाते हो तो बहुत ही सुंदर वहां विग्रह है, टेंपल है, रामानुजाचार्य के भी विग्रह है। उसके अलावा भगवान आदि केशव पेरुमल, भगवान विष्णु स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े हैं और उनके साथ श्री देवी भू देवी कृपा देने के लिए सदैव खड़ी हैं। तो बाकी किसी जगह हम दक्षिण भारत में जो श्री देवी है, लक्ष्मी है, वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। हाँ, जैसे श्री रंगम में रंगवल्ली है, उनको रंगवल्ली कहते हैं, तायर कहते हैं तेलुगु या तमिल में। तो लेकिन यहाँ की खासियत क्या है, जहाँ ये लक्ष्मी है इनके श्री पेरुम्बुदूर रामानुजाचार्य के जन्म स्थान में, उनका प्रेम रामानुजाचार्य से इतना अधिक है कि वो लक्ष्मी देवी रामानुजाचार्य के नाम को धारण करती है, यति राज नाथ वल्ली तायार। क्या नाम है, यति राज नाथ वल्ली तायार। यति राज रामानुजाचार्य का दीक्षित नाम, सन्यासी नेम, सन्यास का नाम क्या था, यति राज। इनको ये सन्यास का नाम दिया था कांचीपुरम ने, कांचीपुरम में। और रामानुजाचार्य का चरित्र बहुत विस्तार है और इतना प्रेरणादायक है, अमेजिंग है, आश्चर्यचकित करने वाला है। और जब रामानुजाचार्य के चरित्र को हम सुनते हैं विस्तृत रूप से, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो रामानुजाचार्य से प्रेम नहीं करेगा। उसका जरूर प्रेम श्रीपाद रामानुजाचार्य से हो जाएगा और उनके चरित्र को सुनने मात्र से उसका जो हृदय है पिघलने लगेगा। इवन ये लक्ष्मी देवी वहां, जनरली हम भगवान के नाम उनके भक्तों से संबंधित सोचते हैं, लेकिन राधा रानी का राम कोई भक्त से संबंधित है, पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन वहां लक्ष्मी देवी को इतना अधिक अनुराग अपने इस भक्त से है श्रीपाद रामानुजाचार्य से, उन्होंने अपना नाम उनके साथ जोड़ लिया है, यति राज नाथ वल्ली, जो यति राज है। हाँ, उनके नाथ कौन है, केशव है, कृष्ण है। उनकी वल्ली मीन्स उनकी जो प्रियसी है, प्रेमिका है, वो लक्ष्मी देवी है। तो ऐसे रामानुजाचार्य का श्री पेरुम्बुदूर में जन्म हुआ था। और श्री पेरुम्बुदूर वो स्थान बहुत एंशियंट है, उस स्थान को भूतपुरी भी कहा जाता है बहुत पहले, क्योंकि एक बार शिवजी कैलाश में बहुत पागल की तरह नृत्य कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे तो उनके जो अटेंडेंस है, वो भूत भूत पिशाच, उनके गण जो होते हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उन्होंने देखा कि ये क्या व्यवहार हो रहा है। अपने स्वामी को देखा कि टेढ़े मेढ़े नृत्य कर रहे हैं तो वो सब भूत हंसने लगे। तो शिवजी ने उनको डांटा, शाप दिया कि आप क्या करो, पृथ्वी में जाकर आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो इन सब भूतों ने कहा जन्म लिया, इस स्थान में जन्म लिया, इसलिए उस स्थान का नाम पुराना नाम भूतपुरी था। वहां उन्होंने तपस्या की और फिर शिवजी ने वहां एक सरोवर बनाया, सारे भूतों ने वहां स्नान किया, उस स्थान को अनंत सारस कहा जाता है। और फिर आगे चलकर वहां श्रीपद रामानुजाचार्य एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, उनके उनके माता का नाम था दीप्तिमती और पिता का नाम था के आसुरी केशवाचार्य। आसुरी केशवाचार्य एक ब्राह्मण थे, और क्योंकि वो यज्ञ पंच जो यज्ञ है वो करने में बहुत एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको सर्वक्रतु भी कहा जाता है। तो इनके विवाह के बाद इन्होंने देखा कि पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, और ऐसा पुत्र होना चाहिए। जब ये मद्रास गए, मद्रास में आप जाते तो वहां सबसे फेमस टेम्पल है पार्थसारथी। पार्थसारथी आप किसी विग्रह को मूछे नहीं देखोगे, लेकिन वहां जो कृष्ण है उनके विग्रह को क्या है, मूछे हैं, ऐसे है कृष्ण। हम 2009 और 10 में गए थे तो वहां देख के आश्चर्यचकित हो गए। और पार्थसारथी का मतलब है कृष्ण, वो कृष्ण है जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे हैं, और उनकी आयु लगभग 100 साल से अधिक थी। तो ऐसे पार्थसारथी के मंदिर गए दीप्तिमती और आसुरी केशवाचार्य, और उनसे प्रार्थना किया कि हमें पुत्र चाहिए, और वो भी आपके जैसा शक्तिशाली तेज से भरा हुआ। तो उन्होंने वह यज्ञ किया और फिर इनको पुत्र हुआ। और एक वैष्णव थे शैलपूर्ण, श्री शैलपूर्ण की दो बहनें थी दीप्तिमती और कांतिमती। इन दोनों को पुत्र प्राप्ति हुई, तो ये जो दीप्तिमती के पुत्र थे उनका नाम उन्होंने रामानुज। देखकर ही उन्होंने देखा कि ये तो सारे महापुरुष के लक्षण प्रकट कर रहा है, तो उन्होंने उनका नाम रामानुज रखा। राम के अनुज मीन्स लक्ष्मण। लक्ष्मण 14 साल या कितने साल वनवास में थे, कभी सोए नहीं, 12 साल या 14 साल, और 14 साल राम की सेवा में इतना मग्न थे कि उन्होंने अपनी आंखों को ब्लिंक भी नहीं किया, झपके भी नहीं आंख। इसको कहते हैं सेवा का, क्योंकि अनंत शेष है। सेवा की शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है, तो किससे प्राप्त होती है हमें, अनंत शेष से, बलराम से, गुरु से। ये गुरु है अनंत शेष नित्यानंद प्रभु बलराम। बलराम के सारे विस्तार हैं, तो उनसे ये शक्ति सेवा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि एक तो है सेवक भगवान और दूसरे है सेव्य भगवान। सेवक भगवान तो बलराम है और सेव्य भगवान कौन है, कृष्ण है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि श्री संप्रदाय की जो फिलॉसफी है वो केवल दो शब्दों में है। दो शब्द क्या है, एक है शेष और दूसरा है शेषी। क्या है दो शब्द, शेष और शेषी। शेष का मतलब ही है सर्वंट, जो लक्ष्मण है अनंत शेष, और दूसरा शेषी। शेषी कौन है, रंगनाथ कृष्ण है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य का प्रकट्य होता है, और रामानुजाचार्य बहुत पावरफुल वैष्णव रहे, और उन्होंने कई प्रकार से कृष्ण भावना का प्रचार किया पूरे भारतवर्ष में। और उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी महापूर्ण से, उन्होंने चार आचार्यों से दीक्षा और शिक्षा प्राप्त की थी, महापूर्ण से, गोष्ठीपूर्ण से, और यमुनाचार्य से भी उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया था, और कई आचार्य थे। तो ऐसे रामानुजाचार्य का आज तिरुभाव है, तो कहने के लिए तो बहुत है लेकिन टाइम और हुआ है। तो रामानुजाचार्य का जो तिरुभाव है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, आखिरी जो उनका समय था। तो रामानुजाचार्य जब श्री रंगम में थे तो वहाँ उन्होंने शरीर इस प्रकार से त्यागा था, वो अपने भक्तों के संग में थे, और उन्होंने अपना जो सर है वो गोविंद, जो उनके एक शिष्य थे या भक्त थे, उनके सर गोद में अपना सर रखा, और उनके एक शिष्य थे अंध्रपूर्ण, उनके गोद में अपने पाँव रखे, और इस प्रकार से लेटे कि जो अपने आध्यात्मिक गुरु के जो वुडन शूज हैं, वुडन शूज को क्या कहते हैं, पादुकाएं हैं, खड़ा हुआ, उनको अपने आंखों के सामने रखते हुए अपने इस शरीर को त्यागा कृष्ण का स्मरण करते हुए, तो इस चीज से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है कि वास्तव में हम सोचते हैं कि मैं शरीर वृंदावन में त्यागू, कहाँ त्यागू, लेकिन वास्तव में सर्वोत्कृष्ट स्थान शरीर को त्यागने का क्या है, वैष्णव के संग में या उनकी गोद में, क्योंकि हाँ तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम और सारे धाम सारे तीर्थ भक्त के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने शरीर त्यागा था और रामानुजाचार्य बहुत कलयुग शुरू होकर 4119 साल के बाद प्रकट हुए थे 13 अप्रैल 1017 को, और लगभग 120 से 128 साल वो रहे 1137 तक। और फ्राइडे था उस दिन, शुक्ल पंचमी का शुक्ल पक्ष पंचमी का तिथि था, उस समय वो प्रकट हुए थे रामानुजाचार्य। तो ऐसे रामानुजाचार्य का आज भी शरीर, इतने साल हो गए, लगभग हजार साल हो गए, आज भी रामानुजाचार्य का शरीर श्रीरंगम में है। आप जाते हैं, हाँ मैंने बहुत पहले सुना था, जब हम गए दो बार श्रीरंगम में 2009 और 10 में, तो देखा कि रामानुजाचार्य इस मुद्रा में, बैठी हुई मुद्रा में है आज भी, और उनकी उधर आप जाके देख सकते हैं, उनका सन्निधि कहते हैं उसको, सन्निधि का मतलब उनका समाधि एरिया, लेकिन वहाँ उनको विग्रह के रूप में ऐसे बैठे हैं। वहाँ के भक्तगण आचार्य कहते कि उनकी जो उंगली, ये नाखून बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, उनके शरीर को बहुत बड़ा थिक लेप लगाया हुआ है पूरे सब जगह, उनकी आँखें ऐसी खुली है। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत विशेष आचार्य हैं, फ्यूचर में हम कभी उनके चरित्र को वर्णन कर सकते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभावतिथि महामहोत्सव के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के।